दोस्तों, यदि आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं और अपना व्यवसाय बदलने का सोच रहे हैं या कुछ नया करने का सोच रहे हैं, कुछ अपने बलबूते पे करने का सोच रहे हैं, तो उसमें लघु उद्योगों में एक जो सबसे मजेदार बिजनेस आजकल है वो है माइग्रेशन एजेंट का। ये बिजनेस कैसे शुरू किया जाता है, इसमें क्या दिक्कतें आती हैं, क्या चुनौतियां हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह सब जानने के लिए SBS हिंदी के स्टूडियो में आज हमने बुलाया है रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट और माइग्रेशन एक्सपर्ट सीमा चौहान को। सीमा जी, SBS हिंदी में आपका स्वागत है।
थैंक यू।
सीमा जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि भारत से ऑस्ट्रेलिया तक आपका सफर कैसे शुरू हुआ?
मैं ऑस्ट्रेलिया आई जून 98 में टू स्टडी बैचलर ऑफ मैनेजमेंट मेजरिंग इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी टू यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया एडिलेड। एंड देन आई मूव टू ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी टू डू माई MBA। I came here on a student visa and I studied here. That's what I did initially.
तो फिर आपने माइग्रेशन एजेंट बनने का कैसे सोच लिया? हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से इवेंट मैनेजमेंट से सीधे शिफ्ट होके माइग्रेशन एजेंट?
I'm a very people's person and मैंने सोचा कि I found migration very interesting. I went back to study in 2007 to Griffith University, did a migration agent graduate certificate in Australian migration law and practice, and in 2008 I got registered as a migration agent.
जी, तो ये 6 महीने का कोर्स होगा लगभग, क्योंकि ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है तो।
यस, दैट इज करेक्ट। आप ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं। ANU यूनिवर्सिटी ऑफर्स ऑनलाइन कोर्सेज एंड यू कैन डू दैट टू बिकम अ रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट।
जी, और इसका फॉर्मेट क्या होता है? आप पढ़ाई करते हैं, केस स्टडीज और असाइनमेंट्स वगैरह, एग्जाम्स?
यस, सो ऑल ऑफ दोस आर इंक्लूडेड इन द कोर्स।
कोर्स, ठीक।
एंड देन यू आल्सो गेट टू प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस मतलब इंटर्नशिप की तरह किसी
Correct.
के साथ।
जी, yes.
चलिए, आपने कोर्स खत्म किया, उसके बाद क्या सबसे पहला जॉब पाने में कितनी मुश्किलें आई आपको?
मेरे पास और क्वालिफिकेशंस थी तो फर्स्ट जॉब लेने में कोई दिक्कत नहीं आई। आई गॉट अ जॉब एज एन असिस्टेंट कंसल्टेंट विद एन इंटरनेशनल माइग्रेशन लॉ फर्म एंड मैंने वहां पे 6 महीने काम किया।
तो ये 6 महीने काम करने के बाद जब आपने अनुभव बटोर लिया एक इंटरनेशनल माइग्रेशन एजेंसी के साथ काम करने में, तब जाके कहीं आपने फैसला किया कि अब अपना काम शुरू करना चाहिए, अपना लघु उद्योग स्मॉल बिजनेस शुरू करते हैं माइग्रेशन एजेंसी का?
हाँ जी, तो मैंने अपना होम बेस्ड बिजनेस स्टार्ट किया इन 2009।
तो घर से शुरू करने का निर्णय क्यों लिया? क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने आपको मोटिवेट किया कि नहीं, घर से शुरू करते हैं इंस्टेड ऑफ बिग ऑफिस 4 लोगों को रिसेप्शन पे बिठाते हैं?
Initially, the decision was flexibility to work from home as well as to see how the business will expand. So I didn't want to take a lot of risks and obviously as a full-time mother as well.
तो आप कह रहे हैं कि माइग्रेशन एजेंसी अगर महिलाएं शुरू करती हैं तो उनके लिए काफी फ्लेक्सिबल ऑप्शन है कि 3 दिन काम किया, अपने केसेस पे काम किया, लोगों से मीटिंग की, तो इजी फॉर्मेट है लोगों के लिए ये बिजनेस?
यस, इट इज वेरी इजी, फ्लेक्सिबल। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस यू कैन डू ऑनलाइन, सो यू कैन हैव क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड।
अगर आपने जैसे घर से शुरू किया, ये तो लघु उद्योग बिल्कुल स्मॉल बिजनेस में भी बिल्कुल स्मॉल बिजनेस हो गया कि आप एक वेबसाइट, अपने घर में ऑफिस, स्काइप, टेलीफोन और फेसबुक पे प्रेजेंस या इंस्टाग्राम वगैरह पे प्रेजेंस के साथ आप ये शुरू कर सकती हैं। आप क्या क्या इस्तेमाल करती हैं?
शुरू में तो सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ, तो अपने क्लाइंट्स को, बिकॉज आई वॉज फ्रॉम द हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड, आई बिलीव्ड इन कस्टमर सर्विस, शुरू में तो वर्ड ऑफ माउथ ही था। देयर वॉज नो वेब बेस, देयर वॉज नथिंग, इट वॉज ओनली ऑन वर्ड ऑफ माउथ। नाउ आई हैव वेब प्रेजेंस।
कितना इम्पोर्टेंट मानेंगी आप वेब प्रेजेंस, फेसबुक प्रेजेंस को?
इट इज इम्पोर्टेंट, हाउएवर नॉट एसेंशियल, बिकॉज मेरे लिए वर्ड ऑफ माउथ अभी तक काम कर रहा है।
अच्छा, एक चीज जानना चाहूंगा कि हाल ही में हमने खबरों में पढ़ा है कि कई माइग्रेशन एजेंट्स, हमारे भारतीय मूल के माइग्रेशन एजेंट्स, 2 या 3 तरह के फ्रॉड केसेस में ज्यादातर लिप्त पाए गए हैं, इंडल्जिंग जिसे हम कहते हैं। एक तो 457 वीजा फ्रॉड्स में, जो वहां से लोगों को नकली 457 वीजास ऑफर करके लाया जा रहा है। दूसरा PR का झांसा जो देते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी का झांसा। और तीसरा है स्टूडेंट वीजा स्कैम्स। अभी आपने न्यूजीलैंड में भी सुना होगा, 120 स्टूडेंट्स को डिपोर्ट करने की बात आ गई थी और स्टूडेंट्स ने, छात्रों ने बताया कि हमारी कोई गलती नहीं है, ये तो हमें माइग्रेशन एजेंट ने गलत इन्फॉर्मेशन दी। ऑस्ट्रेलिया में एज अ माइग्रेशन एजेंट अगर आप अपना लघु उद्योग कर रहे हैं तो किस चीज को सबसे महत्वपूर्ण मानेंगी आप? कौन सा इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपके लिए, दूसरों के लिए भी जो माइग्रेशन एजेंट्स हैं?
देखिए, इन दिस बिजनेस आपको हर साल री रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, तो यू हैव टू अप्रूव योर सेल्फ एज अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन। अगर आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट आती है तो मारा, विच इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो हर कंप्लेंट के लिए एक्शन लेती हैं। तो जो आप एजेंट्स बोल रहे हैं उनके अगेंस्ट कंप्लेंट्स होंगी, इसीलिए ये हुआ है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी एथिकल इन दिस बिजनेस।
सीमा जी, आपसे एक जानना चाहूंगा, आपने एथिक्स की बात की, तो सबको जो अचंबा होता है वो होता है माइग्रेशन एजेंट्स की फीस स्ट्रक्चर पे। जब भी आप किसी مائگریشن ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ فیس مانگتے ہیں. یہ فیس کس طریقے سے ڈیسائیڈ کی جاتی ہے؟ اگر کوئی اپنا لگو ادیوگ شروع کر رہا ہے اسمال بزنس مائگریشن ایجنسی کا, تو وہ فیس اسٹرکچر اپنا کچھ بھی مانگ سکتے ہیں یا کہیں پر ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ نہیں ہمیں اتنی ہی فیس چارج کرنی ہے؟
ویل, جو مائگریشن ایجنٹس ہیں نارملی they have to charge reasonable. So there is, we declare to the MARA, that is the regulatory authority, ki hum kitna charge karte hain, and on the basis of that there is on the MARA website reasonable fee structure. Lekin har case unique hota hai, har case mein you know sometimes there is health issues, there is character issues, and there's more time spent than expected. So uske us basis pe some agents charge extra.
آپ نے ایتھکس کی بات کی, اس کے ساتھ ہی کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کی بات بھی آتی ہے. ویسے تو آپ لگو ادیوگ ہے مائگریشن ایجنٹ, تو سی ایس آر بڑی کمپنیز میں زیادہ ورک کرتا ہے, لیکن کتنا ضروری ہے مائگریشن ایجنٹ کو اپنی آسٹریلیائی کمیونٹی کو واپس دینا کسی نہ کسی طریقے سے اپنی ایکسپرٹیز سے ہیلپ کر کے؟
ہاں, بہت ضروری ہے کمیونٹی کو واپس دینا. آئی ایم اے مائگریشن ایکسپرٹ فار این آرگنائزیشن کال رائز اپ, آر آئی زیڈ ای یو پی آسٹریلیا. یہ کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن ہے جو ڈومیسٹک اینڈ فیملی وائلنس وکٹمس کو اسسٹ کرتے ہیں. آئی ڈو گیو دیم ایڈوائس ویئر دے کین فائنڈ فردر ہیلپ ان دیئر یونیک کیسز, اور کئی بار ہندی اسپیکنگ وکٹمس کو بھی میں اسسٹ کرتی ہوں.
جی, تو یہ ساری ایڈوائس پرو بونو ہوتی ہے, یعنی کہ فری میں ہوتی ہے؟
ایبسولیٹلی جی. اینڈ یو نو ایز اے مائگریشن ایجنٹ دس از مائی وے آف گیونگ بیک ٹو دا کمیونٹی بیکاز اٹ از اے ویری امپورٹنٹ سوشل کاز ایٹ دا مومنٹ.
جی, اچھا ایک چیز جاننا چاہوں گا, جیسے کہ کہا آپ نے کہ یہ فیملی وائلنس سے ریلیٹڈ اویئرنیس پروگرامس بہت امپورٹنٹ کاز ہے آسٹریلیا کی سوسائٹی میں, تو حال ہی میں سننے میں آیا تھا کہ کیریکٹر بیس چیکس کیے جائیں گے جو پی آر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یا جو یہاں 457 پہ ہیں, اگر کوئی بھی ایسی کمپلینٹ ہوئی جو فیملی وائلنس سے ریلیٹڈ ہے تو بہت اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے گا, اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گی؟
جی, پارٹنر ویزا کے لیے یو نو دیر از ان دا پائپ لائن, جن کے اوپر پہلے فیملی اور ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہیں ان کے لیے اسٹرکٹ ہونے والا ہے کہ ان کے پارٹنرز کو پروبیبلی ویزا نہیں ملے گا.
جی, اچھا چلتے چلتے سیما جی, کچھ ٹپس ہمارے سننے والوں کے لیے جو اب انٹرسٹڈ ہیں اپنا مائگریشن ایجنسی کا کام شروع کرنے کے لیے, کیسے شروع کریں, کیسے پروموٹ کریں کچھ شبدوں میں؟
ایک تو اگر آپ کے پاس اٹینشن ٹو ڈیٹیل ہے, آپ کو اپنی نالج اپ ڈیٹ کرنے کا شوق ہے, اور یو آر اے پیپلز پرسن, دس از دا رائٹ بزنس فار یو. یو کین پروموٹ یور بزنس آن فیس بک, آن ویریئس سوشل میڈیاز, آن ود یور ویب پریزنس, اینڈ اوبویسلی ایز اے سیڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ورڈ آف ماؤتھ اینڈ یور نیٹ ورکنگ اسکلز.
سیما جی, SBS ہندی میں بات کرنے کے لیے بہت بہت دھنیواد.
تھینک یو.